जनांकी या जनसांख्यिकीय कारक डेमोग्राफिक फैक्टर्स प्रजननता को प्रभावित करने वाले जनांकी कारकों में आयु, लिंग, वैवाहिक स्तर एवं विवाहित जीवन की अवधि, प्रवास, नगरीकरण आदि प्रमुख हैं। पहला, किसी जनसंख्या का आयु का संघटन प्रत्यक्ष रूप से प्रजनन दर को नियंत्रित करता है। जिस देश की जनसंख्या में प्रजनन आयु वर्ग 15 से 44 वर्ष के स्त्री पुरुषों का अनुपात अधिक होता है, वहां प्रजनन दर उच्च होने की संभावना रहती है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों में युवा जनसंख्या की बहुलता के कारण वहां प्रजनन दर उच्च है। वहां युवा जनसंख्या की अधिकता का कारण ऊंची शिशु मृत्यु दर तथा निम्न जीवन प्रत्याशा का होना है। स्वास्थ्य सुविधाओं के व्यापक प्रसार से विकसित देशों में शिशु मृत्यु दर और वृद्ध मृत्यु दर दोनों ही अपेक्षाकृत निम्न हैं, जिसके कारण वहां युवाओं का अनुपात तथा प्रजनन दर दोनों विकासशील देशों की तुलना में कम है। दूसरा, वैवाहिक स्तर तथा विवाहित जीवन की अवधि का प्रजननता से प्रत्यक्ष संबंध है। जिस समाज में विवाह आवश्यक माना जाता है, वहां विवाहित युग्मों का अनुपात उच्च होने के कारण प्रजनन दर भी उच्च पाई जाती है। इसके विपरीत, जिन देशों या समाजों में विवाह आवश्यक नहीं माना जाता है अथवा विवाह देर से होता है, वहां प्रजनन दर निम्न होती है। तलाक, विधवा, विधुरों आदि की संख्या में वृद्धि से प्रजनन दर में ह्रास और पुनर्विवाह, विधवा विवाह, बहुविवाह आदि प्रथाओं के प्रचलन से प्रजनन दर में वृद्धि की प्रवृत्ति मिलती है। इस प्रकार विवाहित जीवन की अवधि लंबी होने पर सामान्यतः प्रजननता अधिक और छोटी होने पर प्रजननता न्यून पाई जाती है। तीसरा, प्रजननता को नियंत्रित करने में लिंग परक प्रवास या गतिशीलता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब किसी क्षेत्र से युद्ध, रोजगार आदि के उद्देश्य से युवाओं का अल्प या दीर्घ काल के लिए अधिक संख्या में स्थानांतरण होता है, तब वहां उस अवधि में प्रजनन दर घट जाती है, क्योंकि युवा स्त्री पुरुषों के पृथक पृथक रहने से स्त्रियां गर्भधारण से वंचित रह जाती हैं। चौथा, प्रजननता पर नगरीकरण का भी प्रभाव पाया जाता है। नगरों में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक पाई जाती है, जिसका मुख्य कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक संख्या में युवक रोजगारों की खोज में अथवा उच्च शिक्षा के लिए अकेले नगर में जाते हैं और उनका परिवार गांव में रहता है। इस प्रकार नगरों में प्रजनन दर निम्न पाई जाती है। बढ़ती आवश्यकताओं, शिक्षा के प्रसार, स्त्रियों की आर्थिक क्रियाओं में संलग्नता आदि के कारण नगरों में छोटे परिवार को प्राथमिकता दी जाती है, जिसका परिणाम निम्न प्रजनन दर के रूप में सामने आता है। सामाजिक सांस्कृतिक कारक सोशियो कल्चरल फैक्टर्स प्रजननता के निर्धारण में विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यद्यपि प्रजनन क्षमता एक जैविक तत्व है और काम वासना व्यक्ति की जैविक आवश्यकता है, किंतु संतान उत्पत्ति की इच्छा तथा परिवार का छोटा या बड़ा होना प्रायः सामाजिक मांग और आवश्यकता से प्रभावित होता है। प्रजननता को प्रभावित करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कारकों में प्रमुख हैं। पहला, विवाह के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण तथा विवाह की आयु। दूसरा, परिवार नियोजन के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण। तीसरा, शैक्षिक स्तर। चौथा, समाज में स्त्रियों की दशा। पांचवा, पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा। छठा, धार्मिक विश्वास। सातवां जाति संरचना आदि। पहला, विवाह के प्रति दृष्टिकोण प्रजननता को अधिक प्रभावित करता है। जिस समाज में विवाह आवश्यक संस्कार माना जाता है वहां स्वाभाविक रूप से प्रजनन दर उच्च पाई जाती है। इसके विपरीत जिस देश या समाज में विवाह आवश्यक नहीं माना जाता वहां प्रजनन दर अपेक्षाकृत निम्न पाई जाती है। इस प्रकार विवाह की आयु भी एक प्रमुख कारक है। जिस समाज में बाल विवाह या अल्प आयु में विवाह की प्रथा पाई जाती है वहां विवाहित युग्मों की संतानोत्पादक आयु अधिक लंबी होने के कारण प्रजनन दर उच्च पाई जाती है। इसके विपरीत अधिक आयु में विवाह होने पर प्रजनन दर निम्न हो जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आयु और प्रजनन दर में विपरीत संबंध पाया जाता है। भारत में पहले बाल विवाह की प्रथा थी, अब भारत सरकार द्वारा स्त्रियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और पुरुषों की 21 वर्ष निश्चित की गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य प्रजनन दर में कमी लाना है। दूसरा, जिस समाज में लोग परिवार को छोटा रखने के इच्छुक और तत्पर होते हैं वहां प्रजननता निम्न पाई जाती है। जिस समाज में स्त्रियां घर से बाहर जाकर नौकरी या काम करती हैं और उन्हें बच्चों के लालन पालन का समय कम मिलता है वहां लोग परिवार नियोजन चाहते हैं। नगरों में बच्चों का पालन पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं आदि खर्चीली होती हैं, अतः वहां लघु परिवार को प्राथमिकता दी जाती है। भारत सहित अनेक विकासशील देशों में विशेष रूप से उनके ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार को पूंजी समझा जाता है, जिससे परिवार वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है और प्रजननता उच्च पाई जाती है। तीसरा, शिक्षा और शैक्षिक स्तर भी प्रजनन दर को प्रभावित करते हैं। समाज में शिक्षा, विशेष रूप से स्त्री शिक्षा का प्रसार प्रजनन दर को कम करने में सहायक होता है। सामान्यतः शिक्षित स्त्रियां बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा तथा उनके भविष्य के प्रति अधिक सचेत होती हैं और सीमित परिवार की इच्छुक होती हैं। शिक्षा के उत्थान से परिवार नियोजन के अवरोधक, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, धार्मिक कट्टरता आदि कम हो जाते हैं। शैक्षिक स्तर और प्रजननता में सामान्यतः विपरीत संबंध पाया जाता है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के एक सर्वेक्षण 1960-61 के अनुसार भारत में इंटरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त स्त्रियों के औसत रूप से 2 बच्चे, हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त स्त्रियों के 4.6 बच्चे, जूनियर हाई स्कूल तक शिक्षित स्त्रियों के 5 बच्चे और प्राथमिक कक्षा तक शिक्षा पाने वाले तथा अनपढ़ स्त्रियों में 6.6 बच्चे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के विषय में गार्नियर 1976 के निष्कर्ष के अनुसार वहां विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त स्त्रियों के औसत रूप से 1.86 बच्चे, स्कूली शिक्षा प्राप्त स्त्रियों के 3.06 बच्चे और अशिक्षित स्त्रियों के 4.82 बच्चे थे। समाज में स्त्रियों के स्थान का भी प्रजननता के निर्धारण में उल्लेखनीय योगदान पाया जाता है। पुरुष प्रधान समाज में जहां स्त्रियों की स्वतंत्रता कम होती है उन्हें भोग की वस्तु समझा जाता है और समाज में उन्हें निम्न स्तर दिया जाता है वहां प्रजनन दर उच्च पाई जाती है। इस्लामिक देशों में स्त्रियों के निम्न स्तर के कारण प्रजनन दर उच्च है। इसके विपरीत पाश्चात्य देशों में जहां समाज में स्त्रियों को पुरुष के समान स्थान प्राप्त होता है अथवा नारी मुक्ति आंदोलन सक्रिय है वहां प्रजनन दर अपेक्षाकृत निम्न है। पांचवा, कुछ समाजों तथा परिवारों में पुत्र जन्म को अधिक महत्व दिया जाता है। विश्व के अधिकतर समाजों में कम से कम एक पुत्र का होना आवश्यक समझा जाता है, जिसका मुख्य कारण है पुरुष सदस्य पर परिवार का निर्भर होना। अनेक दंपत्ति कई कई कन्याओं के जन्म के पश्चात भी पुत्र प्राप्ति की लालसा में संतान उत्पत्ति करते रहते हैं, जिससे प्रजनन दर में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है। छठा, प्रजनन के निर्धारण में धार्मिक विश्वास तथा धार्मिक मान्यताओं एवं प्रतिबंधों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यद्यपि विश्व का कोई भी धर्म परिवार नियोजन के ऐच्छिक प्रतिबंधों का पक्षधर नहीं है, किंतु नियंत्रण की प्रवृत्ति विभिन्न धर्मों में अलग अलग पाई जाती है। परिवार नियोजन के ऐच्छिक उपायों का संभवतः इस्लाम धर्म सर्वाधिक विरोधी है, जिसके कारण मुस्लिम देशों में परिवार नियोजन पर बल नहीं दिया जाता है और फलतः वहां प्रजनन दर उच्च पाई जाती है। किंग्सले डेविस ने लिखा है कि भारत में हिंदू और मुसलमान एक ही पर्यावरण में साथ साथ निवास करते हैं, किंतु मुसलमानों की जन्मदर हिंदुओं की जन्मदर से अधिक है। यह तथ्य विभिन्न भारतीय जनगणनाओं से भी स्पष्ट होता है। इसी प्रकार परिवार नियोजन के ऐच्छिक उपायों पर रोमन कैथोलिक ईसाई अधिक कठोर नियंत्रण रखते हैं, जबकि प्रोटेस्टेंट ईसाई इसके प्रति अपेक्षाकृत नरम दृष्टिकोण रखते हैं। इस कारण से प्रथम समुदाय की प्रजननता द्वितीय समुदाय की तुलना में अधिक पाई जाती है। सातवां, जाति संरचना का प्रभाव भी प्रजननता पर दृष्टिगोचर होता है। भारत में सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई जातियों जैसे अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातियों में प्रजनन दर सवर्ण जातियों की तुलना में अधिक पाई जाती है। प्रजननता को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में यौन व्यवहार, सेक्सुअल बिहेवियर, विवाह के प्रकार, सामाजिक परंपराएं, प्रथाएं एवं मान्यताएं आदि भी उल्लेखनीय हैं। इस पर अवैध जन्मों की मात्रा तथा सामाजिक मान्यता का भी प्रभाव देखा गया है। आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर्स। प्रजननता के निर्धारण में परिवार की आय, जीवन स्तर, व्यवसाय, आहार की प्रकृति आदि आर्थिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इनमें आय ही सर्वप्रमुख तथा मौलिक तत्व है, जो अन्य तत्वों को नियंत्रित करता है। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि निर्धनों में धनिकों की तुलना में जन्म दर अधिक पाई जाती है। उच्च आय वर्गीय परिवारों में मनोरंजन के साधनों की अधिकता, बच्चों का उच्च स्तरीय पालन पोषण तथा संपत्ति को विभाजित होने से बचाने की इच्छा के अनुकूल छोटे परिवार को प्राथमिकता, उच्च जीवन स्तर बनाए रखने की तत्परता आदि कारणों से प्रजनन दर हतोत्साहित होती है। इसके विपरीत निर्धन या अल्पाय वाले परिवारों में बच्चे कम आयु में ही विभिन्न आर्थिक कार्यों में लग जाते हैं और परिवार की आय वृद्धि में सहायक होते हैं। इस कारण से परिवार को पूंजी समझा जाता है और संतानोत्पत्ति पर रोक नहीं लगाई जाती है। इनमें बच्चों की शिक्षा या अन्य खर्चीली तैयारी पर कोई व्यय नहीं पड़ता है और साथ ही निर्धन परिवार जीवन स्तर में बनाए रखने के प्रयास होते हैं। अतः ये बच्चों की संख्या बढ़ाने से विशेष परेशानी का अनुभव नहीं करते। यही कारण है कि ग्रामों में नगरों की तुलना में मलिन बस्तियों में नगरों के अन्य क्षेत्रों की तुलना में प्रजनन दर अधिक पाई जाती है। यही स्थिति विकसित और विकासशील देशों के मध्य भी है। विकसित देशों में प्रजनन दर विकासशील देशों की तुलना में कम है। आर्थिक कारकों में व्यवसाय भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। सामान्यतः शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्तियों की तुलना में बौद्धिक एवं मानसिक कार्य करने वाले व्यक्तियों की प्रजनन क्षमता एवं प्रजनन दर कम होती है। विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में संलग्न कार्यकारी स्त्रियों में प्रजननता कम होती है, क्योंकि वे सीमित परिवार की इच्छुक होती हैं। भोजन या आहार की प्रकृति से भी प्रजननता अधिक प्रभावित होती है। भोजन की आदतें तथा प्रयुक्त भोज्य पदार्थों का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष संबंध आय के स्तर से संबद्ध होता है। सामान्यतः उच्च आय वर्ग के व्यक्ति भोजन में प्रोटीन युक्त पदार्थों का उपभोग करते हैं, जिससे प्रजनन शक्ति में कमी आती है और अंततः प्रजननता कम हो जाती है। इसके विपरीत निर्धन लोगों में अल्प पोषण से ऐसे दोष नहीं आते हैं। इस प्रकार गरीबों में उच्च प्रजननता और धनिकों में निम्न प्रजननता के पीछे पोषण स्तर तथा आहार की प्रकृति का हाथ भी दिखाई पड़ता है। राजनीतिक कारक। प्रजननता को प्रभावित करने में सरकारी नीति का अपना अलग महत्व है। विभिन्न देशों की सरकारें अपने देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुसार जनसंख्या नीति अपनाती हैं। साम्यवादी चीनी सरकार ने परिवार को सीमित रखने की सरकारी नीति तथा कार्यक्रमों को दृढ़ता से लागू किया है। इसके फलस्वरूप एक विवाहित युग में से पूरे जीवन में केवल एक ही संतान उत्पन्न करने का अधिकार है और अन्य संतानों की उत्पत्ति दंडनीय है। इसके परिणाम स्वरूप पिछले दो दशकों में चीन की जन्मदर में बड़ी तीव्रता से गिरावट आई है। जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से जिन देशों में गर्भपात को वैधता प्रदान की गई है, वहां भी प्रजनन दर में ह्रास हुआ है। भारत में जनसंख्या नियमन के उद्देश्य से सरकारी नीति अपनाई तैयार की गई है और विधिक सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से प्रजनन दर को कम करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसी प्रकार युद्ध में संलग्न जिस देश में युवाओं की अधिक संख्या में मृत्यु हो जाती है, वहां आगामी कुछ दशकों तक प्रजनन दर निम्न रहती है। मनोवैज्ञानिक या व्यक्तिगत कारक, साइकोलॉजिकल या पर्सनल फैक्टर्स। प्रजननता पर व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक धारणा, विचार तथा प्रकृति का भी उल्लेखनीय प्रभाव होता है। पर्यावरण, जाति, धर्म, आय, शैक्षिक स्तर आदि के समान होने पर भी अलग अलग व्यक्तियों की प्रजननता भिन्न भिन्न हो जाती है। कोई पुरुष या स्त्री परिवार में एक संतान को तो कोई तीन संतान को अच्छा मानते हैं। इस प्रकार कुछ लोग एक पुत्र अवश्य चाहते हैं और पुत्र प्राप्ति की कामना से कभी कभी वे कई संतानों को जन्म देते हैं। इस प्रकार प्रजननता के निर्धारण में व्यक्तिगत कारकों का भी कम महत्व नहीं है। विश्व में प्रजननता प्रतिरूप, फर्टिलिटी पैटर्न इन द वर्ल्ड। ए, अशोधित जन्म दर, क्रूड बर्थ रेट। विश्व के विभिन्न देशों की प्रजनन दर में अधिक भिन्नता पाई जाती है। यद्यपि प्रजनन दर या जन्म दर की माप के लिए कई प्रकार के सूचकांकों की गणना की जाती है, किंतु विश्व स्तर पर सभी देशों के लिए सामान्यतः अशोधित जन्म दर, क्रूड बर्थ रेट का ही अधिक उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी गणना के लिए प्रयुक्त आंकड़े सुगमता से उपलब्ध होते हैं। विश्व के विभिन्न देशों के लिए अशोधित जन्म दर के आंकड़े संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रकाशनों में उपलब्ध हैं। आंकड़ों की उपलब्धता तथा तुलनीयता के कारण अशोधित जन्म दर के आधार पर ही अग्रांकित पंक्तियों में विश्व में प्रजननता प्रतिरूप की व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। विश्व में सर्वोच्च जन्म दर 41.9 प्रति हजार अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। एशिया महाद्वीप की जन्म दर 25.2 प्रति हजार विश्व के औसत के बराबर है और शेष सभी महाद्वीपों की जन्म दर विश्व के औसत से नीचे है। सबसे निम्न जन्म दर 11.6 व्यक्ति प्रति हजार यूरोप में पाई जाती है। अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों के पश्चात क्रमशः दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ओशेनिया का स्थान आता है। भूतपूर्व सोवियत संघ की जन्म दर 10.9 प्रति हजार अंकित की गई है, जो यूरोप से कुछ नीची है। अशोधित जन्म दर के प्रादेशिक वितरण के अनुसार संपूर्ण विश्व को 4 वृहद श्रेणियों में विभक्त करके प्रजननता प्रतिरूप का विश्लेषण किया जा सकता है। पहला, अति उच्च जन्म दर वाले प्रदेश 45 प्रति हजार या अधिक। इस श्रेणी के अंतर्गत वे देश सम्मिलित हैं जहां जन्म दर 45 व्यक्ति प्रति हजार या इससे अधिक है। अति उच्च जन्म दर वाले अधिकांश देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं, किंतु कुछ देश पश्चिमी एशिया में भी पाए जाते हैं, मुख्यतः उष्ण कटिबंधी देशों में स्थित विश्व के सर्वाधिक पिछड़े देश हैं। अफ्रीकी देश अंगोला में अशोधित जन्म दर 50 प्रति हजार से ऊपर पाई गई है। अति उच्च जन्म दर वाले अफ्रीकी देशों में अंगोला के अतिरिक्त इथोपिया 48.5, जायरे 47.5 और नाइजीरिया 45.4 प्रति हजार प्रमुख हैं। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में आदिवासी जनसंख्या की अधिकता, घोर अशिक्षा, आर्थिक पिछड़ेपन, उच्च मृत्यु दर के भय से अधिक संतानोत्पत्ति की धारणा तथा बड़े परिवार की अभिलाषा आदि कारणों से जन्म दर बहुत ऊंची है। ये देश अभी जननांगीय संक्रमण की प्राथमिक अवस्था में है, जहां जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक ऊंची है। इन प्रदेशों में परिवार नियोजन के प्रचलित कृत्रिम उपायों का भी प्रचलन लगभग नगण्य है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया में अफगानिस्तान 50.2 और यमन 49.4 व्यक्ति प्रति हजार में भी जन्म दर 45 प्रति हजार से ऊपर है। ये दोनों मुस्लिम देश हैं जहां बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है और परिवार नियोजन को धर्म विरोधी माना जाता है। इसके साथ ही आर्थिक पिछड़ापन, व्यापक अशिक्षा और समाज में स्त्रियों की निम्न स्थिति भी उच्च जन्म दर के लिए उत्तरदायी है। अति उच्च जन्म दर वाले सभी देशों में कुल प्रजनन दर 50 से ऊपर पाई जाती है। विश्व की सर्वोच्च कुल प्रजनन दर अंगोला 7.2 में अंकित की गई है। दूसरा, उच्च जन्म दर वाले प्रदेश। इस श्रेणी के अंतर्गत 30 से 45 प्रति हजार जन्म दर वाले देश सम्मिलित हैं। उच्च जन्म दर वाले अधिकांश देश अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी एशिया और लैटिन अमेरिका में स्थित हैं। अफ्रीका में कीनिया, तंजानिया, जाम्बिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, गैबन, कैमरून, चाड, लीबिया, मारिटानिया, मेडागास्कर आदि देशों में जन्म दर 30 और 45 प्रति हजार के मध्य पाई जाती है। दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित सऊदी अरब, सीरिया, जॉर्डन, इराक और ईरान तथा दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, मलेशिया आदि देशों में भी उच्च जन्म दर पाई जाती है। अफ्रीका और एशिया के उच्च जन्म दर वाले सभी देश विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं, जहां आर्थिक पिछड़ेपन के साथ ही अशिक्षा भी अधिक व्यापक है। अफ्रीका और एशिया के अतिरिक्त उच्च जन्म दर वाले कुछ देश लैटिन अमेरिका में भी स्थित हैं। बोलिविया, पेराग्वे, हंडुरास, निकारागुआ आदि देशों में जन्म दर 30 प्रति हजार से ऊपर है। ये सभी देश विकासशील हैं और जन्म दर को कम करने हेतु प्रयत्नशील हैं। तीसरा, मध्यम जन्म दर वाले प्रदेश। इस वर्ग में उन देशों को समाहित किया गया है जहां औसत जन्म दर 15 से 30 प्रति हजार तक पाई जाती है। इसके अंतर्गत संपूर्ण आंग्ल अमेरिका, संयुक्त राज्य तथा कनाडा, अधिकांश लैटिन अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, मोरक्को, अल्जीरिया, मिस्र और एशिया, भारत, टर्की, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चीन, कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया के अनेक देश तथा न्यूजीलैंड सम्मिलित हैं। मध्यम जन्म दर वाले अधिकांश अफ्रीकी तथा एशियाई देश जननांगी संक्रमण की विस्फोटक अवस्था से गुजर रहे हैं और जनसंख्या नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। परिवार नियोजन के कृत्रिम उपायों द्वारा जन्म दर को कम करने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस वर्ग के अंतर्गत विकसित और विकासशील दोनों श्रेणियों के देश सम्मिलित हैं। आंग्ल अमेरिकी देश, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा तथा न्यूजीलैंड विकसित देश हैं और जननांगीय संक्रमण की चतुर्थ अवस्था, निम्न जन्मदर एवं निम्न मृत्यु दर में हैं, जबकि अन्य सभी देश विकासशील देश की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। चौथा, निम्न जन्मदर वाले प्रदेश। इसके अंतर्गत वे देश सम्मिलित हैं जिनकी अशोधित जन्मदर 15 प्रति हजार से कम है। संपूर्ण यूरोपीय देशों, रूस, जापान और ऑस्ट्रेलिया में जन्मदर अत्यंत निम्न है। केवल दक्षिणी यूरोप के कतिपय देशों को छोड़कर अन्य सभी देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया 14.8, स्वीडन 14.1, यूनाइटेड किंगडम 13.5, फ्रांस 12.9, रूस 10.9, जापान 10.1, जर्मनी 9.9 और इटली 9.8 में अशोधित जन्मदर 15 व्यक्ति प्रति हजार से नीचे है। पश्चिमी यूरोपीय देश आर्थिक रूप से संपन्न और औद्योगिक देश हैं, जहां लगभग 100 वर्ष पहले ही जननांगी संक्रमण प्रारंभ हो गया था और जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों घटने लगी थी। यूरोप में औद्योगिक क्रांति के पश्चात पश्चिमी यूरोपीय देशों में तीव्र औद्योगिकरण हुआ, जिससे नगरीकरण की प्रवृत्ति भी अधिक तेज हो गई थी। इसके परिणाम स्वरूप अनेक छोटे बड़े नगरों का विकास हुआ। नगरीकरण में वृद्धि से शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधाओं में सुधार और विस्तार हुआ, जिससे जन्म दर निरंतर ह्रास होता गया। वर्तमान में ये सभी देश जननांगी संक्रमण की अंतिम अवस्था में पहुंच गए हैं, जहां जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अति निम्न हैं और जनसंख्या लगभग स्थिर हो गई है। यूरोप में फ्रांस, नीदरलैंड, इंग्लैंड, हंगरी आदि कुछ ऐसे भी देश हैं जहां जन्म दर के निरंतर पतन की प्रवृत्ति को देखते हुए वहां अधो जनसंख्या अंडर पॉपुलेशन की आशंका से जन्म दर में उत्थान के प्रयास किए जा रहे हैं। यूरोप में जन्म दर में ह्रास की प्रवृत्ति वहां की सामाजिक आर्थिक क्रांति का परिणाम है। दक्षिणी यूरोप और पूर्वी यूरोप के देशों में अब जन्म दर 15 व्यक्ति प्रति हजार से नीचे है, किंतु अधिकांश देशों में यह 1970 से पहले 20 प्रति हजार से अधिक थी। भूतपूर्व सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की सक्रियता और दृढ़ता से जनसंख्या नियंत्रण के फलस्वरूप जन्म दर में उल्लेखनीय ह्रास हुई। रूसी क्रांति 1917 के पूर्व वहां जन्म दर 47 प्रति हजार थी, जो घटकर 1950 में 27 और 1970 में 20 तक आ गई। वर्तमान रूस की सामाजिक आर्थिक विशेषताएं पूर्वी यूरोपीय देशों के लगभग समान हैं, जहां उद्योग और कृषि दोनों आर्थिक क्षेत्रों का खूब विकास हुआ है। आंग्ल अमेरिका में जनसंख्या विकास का इतिहास अत्यंत नवीन है। लगभग 200 वर्ष पहले मुख्यतः यूरोपीय प्रवासियों द्वारा आवासित यह प्रदेश आज विश्व का सर्वाधिक विकसित तथा संपन्न क्षेत्र है, जो उद्योग, कृषि, प्रौद्योगिकी आदि सभी क्षेत्रों में विश्व में अग्रणी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1850 से पूर्व जन्म दर 55 प्रति हजार थी। परवर्ती वर्षों में आर्थिक एवं सामाजिक समुन्नति के साथ साथ जन्म दर में क्रमिक ह्रास आरंभ हुआ और यह घटकर 1950 तक 24 और 1980 तक 17 प्रति हजार हो गया। आंग्ल अमेरिकी में यूरोपीय संस्कृति का ही प्रसार है। उच्च स्तर स्वास्थ्य सुविधाएं, उच्च शैक्षिक स्तर, उच्च आर्थिक स्तर, भौतिकवादी दृष्टिकोण, समाज में स्त्रियों का उच्च स्तर और स्वच्छंद जीवन की प्रवृत्ति आदि जन्म दर को ह्रासोन्मुख करने में सहायक रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और जापान में भी जन्म दर निम्न है। ये दोनों देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं और यहाँ परिवार नियोजन हेतु कृत्रिम साधनों का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया यूरोपीय मूल निवासियों द्वारा आवासित तथा यूरोपीय संस्कृति का ही पोषक है। जापान, जो एशिया का एकमात्र विकसित देश है, में 1940 के पूर्व जन्म दर 36 प्रति हजार थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहाँ जनसंख्या नियंत्रण पर अधिक बल दिया गया और ऐच्छिक गर्भपात को वैध बना दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप जन्म दर में तीव्रता से ह्रास हुआ और वर्तमान जन्म दर 10 प्रति हजार तक आ गई है। कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट, प्रजननता को व्यक्त करने का एक अन्य सूचक भी प्रयुक्त होता है, जिसे कुल प्रजनन दर प्रति स्त्री जन्मे बच्चों की संख्या। यह सूचक प्रति स्त्री औसत जन्म दर को प्रदर्शित करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के नवीनतम आंकड़े के अनुसार विश्व में प्रति स्त्री औसत जन्म दर 2.7 बच्चे है। विकसित देशों के लिए कुल जन्म दर 1.60 और विकासशील देशों के लिए 3.0 पाई गई है। ज्ञातव्य है कि अशोधित जन्म दर और कुल प्रजनन दर में प्रत्यक्ष संबंध है और दोनों सहगामी तथा समान प्रवृत्ति को ही प्रदर्शित करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जहां जन्म दर उच्च है, वहां कुल प्रजनन दर भी उच्च है, और जहां जन्म दर निम्न है, वहां प्रजनन दर भी सामान्यतः निम्न पाई जाती है। कुल प्रजनन दर के विश्व वितरण के अध्ययन हेतु समस्त देशों को निम्नांकित 4 वर्गों के अंतर्गत रखा जा सकता है। उच्च प्रजननता 4 से अधिक, मध्यम प्रजननता 2 से 4 और तीसरा निम्न प्रजननता 2 से कम। पहला, विश्व की सर्वोच्च प्रजननता अफ्रीका महाद्वीप 5.8 में पाई जाती है। अंगोला में कुल प्रजनन दर 7.2 अंकित की गई है। अति उच्च प्रजननता वाले अन्य देश हैं जायरे 6.7, इथोपिया 6.1, नाइजीरिया 5.4, कीनिया 4.0, दक्षिण पश्चिम एशिया अरब प्रायद्वीप में स्थित यमन में प्रति स्त्री जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या 7.0 पाई गई है। उच्च प्रजननता वाले अन्य एशियाई देश हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान। दूसरा, मध्यम प्रजननता वाले प्रदेश सभी आवासित महाद्वीपों में फैले हुए हैं। एशिया में बांग्लादेश 3.5, इजराइल 2.7, जॉर्डन 3.6, भारत 3.0, इंडोनेशिया 2.4, श्रीलंका 2.0 आदि। अफ्रीका में मिस्र 3.3, लैटिन अमेरिका में निकारगुआ 3.7, पेराग्वे 3.8, मैक्सिको 2.5, ब्राजील 2.2, कोलंबिया 2.6, अर्जेंटीना 2.4 और आंग्ल अमेरिका में संयुक्त राज्य 2.1 और ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड 2.0 आदि मध्यम प्रजननता वाले देश हैं। तीसरा, निम्न प्रजननता का सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र यूरोप महाद्वीप पर है। यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देशों में कुल प्रजनन दर 2.0 से नीचे है। स्वीडन 1.6, यूनाइटेड किंगडम 1.6, फ्रांस 1.9, यूक्रेन 1.4, जर्मनी 1.3, रूस 1.1, इटली 1.2, चेक गणराज्य 1.2 आदि इसके उदाहरण हैं। एशिया में चीन 1.8 और जापान 1.3 में भी प्रजनन दर निम्न है। विश्व के अधिकांश विकसित देशों में कुल प्रजनन दर 2.0 से नीचे है। कनाडा 1.5 और ऑस्ट्रेलिया 1.7 भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आर्थिक विकास और प्रजनन दर। पाश्चात्य देशों के विगत 100 वर्षों के अनुभव के आधार पर प्रतिपादित जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी के अनुसार आर्थिक उन्नति के साथ साथ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में पतन की प्रवृत्ति पाई जाती है। आर्थिक विकास का प्रभाव जन्म दर पर कई प्रकार से पड़ता है। आर्थिक प्रगति के परिणाम स्वरूप जन स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होता है तथा भरण पोषण की क्षमता में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु दर में कमी आती है। मृत्यु दर, विशेषतः शिशु मृत्यु दर में कमी आने से माता पिता अधिक बच्चे नहीं चाहते हैं। स्त्रियों द्वारा आर्थिक कार्यकलापों में अधिक भागीदारी और अपेक्षाकृत स्वच्छंद जीवन तथा शिक्षा के व्यापक स्तर प्रसार से वे अधिक बच्चों का पालन पोषण नहीं करना चाहती है। विश्व के सभी विकसित देशों में जन्म दर निम्न तथा अत्यंत निम्न है। पाश्चात्य विकसित देशों में लगभग एक शताब्दी पहले जननांगीय संक्रमण का आरंभ हो गया था और पिछले 40-50 वर्षों में अधिकांश विकसित देश जननांगीय संक्रमण की चरम अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। विकासशील देशों की स्थिति इसके विपरीत रही है। विकासशील देशों में जननांगीय संक्रमण का आरंभ हाल की घटना है, जो विगत 2 या 3 दशकों से आरंभ हुई है। किंतु यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आर्थिक विकास के साथ ही विकासशील देशों के जन्म दर और मृत्यु दर में काफी तीव्रता से ह्रास हुआ है। विगत 50 वर्षों में विकसित देशों के अशोधित जन्म दर में 6 अंक 1950 में 31 और 1995 ईस्वी में 25 प्रति हजार का ह्रास अंकित किया गया, जबकि उसी अवधि में विकासशील देशों में औसतन 16 अंक 1950 में 41 और 1995 में 25 की कमी आई है। अधिकांश विकासशील देशों में जन्म दर 20 प्रति हजार से ऊपर है। सामान्यतः जो देश आर्थिक रूप से जितने ही पिछड़े हुए हैं, वहां जन्म दर उतनी ही उच्च है। अफ्रीका के सर्वाधिक पिछड़े देशों में जन्म दर 40 प्रति हजार से भी ऊपर है। इस प्रकार एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों में भी आर्थिक विकास का प्रत्यक्ष प्रभाव उनके सामान्य जन्म दरों पर देखा जा सकता है। भारत में प्रजननता, फर्टिलिटी इन इंडिया। भारत में प्रजननता की तुलना विश्व के अन्य देशों से करने पर विदित होता है कि यह पाश्चात्य विकसित देशों की अपेक्षा अधिक है, किंतु अनेक विकासशील देशों से कम है। तुलना के लिए सामान्यतः अशोधित जन्म दर को आधार बनाया जाता है, क्योंकि विश्व स्तर पर इसी प्रकार के आंकड़े उपलब्ध हैं। इसके लिए प्रति स्त्री उत्पन्न होने वाली संतानों की औसत संख्या का भी प्रयोग किया जाता है। एक स्त्री अपने संपूर्ण विवाहित जीवन में औसतन 2 संतानों को जन्म देती है तो जनसंख्या में वृद्धि की संभावना नहीं होती और वृद्धि दर 0 होती है। संतानों की संख्या इससे अधिक होने पर वह जनसंख्या वृद्धि की और कम होने पर जनसंख्या ह्रास की सूचक होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़े के अनुसार सन 2000-2005 में विकसित देशों में जन्म दर का औसत 1.8 शिशु और विकासशील देशों में 2.9 शिशु प्रति स्त्री था। संपूर्ण विश्व के लिए यह औसत 2.7 शिशु प्रति स्त्री अंकित किया गया है। भारत में औसतन जन्म दर 3.0 शिशु 1970 से 75 में 5.4 शिशु प्रति स्त्री पाया गया है, जो विश्व के औसत से भी अधिक है और तीव्र जनसंख्या वृद्धि का सूचक है। 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में जन्म दर 49 प्रति हजार थी। तीसरे दशक से इसके अति मंद गति से ह्रास होना आरंभ हुआ और वह थोड़े उतार चढ़ाव के साथ 1960 और 71 के दशक में 70 के दशक में 41 प्रति हजार तक थी। सरकारी प्रयास तथा सामाजिक जनजागरण के फलस्वरूप 1980 के दशक से परिवार नियोजन में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त होने लगी, जिससे जन्म दर में पतन की गति पहले से तीव्र हो गई। 1990 के दशक में जन्म दर घटकर 32 प्रति हजार तक पहुंच गई। 21वीं शताब्दी के आरंभ में भारत की अशोधित जन्म दर 27 प्रति हजार अंकित की गई है। भारत में प्रजननता का प्रादेशिक प्रतिरूप। भारत की विशालता तथा भौगोलिक विविधता के परिणाम स्वरूप यहाँ सामाजिक आर्थिक दशाओं में पर्याप्त क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है, जिसका प्रभाव जनसंख्या संरचना के साथ ही जन्म दर और मृत्यु दर पर भी परिलक्षित होता है। भारत में अशोधित जन्म दर 27.2 शिशु प्रति हजार है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह 28.9 और नगरीय क्षेत्रों में 21.5 प्रति हजार है। देश की सर्वोच्च जन्म दर उत्तर प्रदेश 35.5 शिशु प्रति हजार में अंकित की गई है, जिसके पश्चात क्रमशः मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मेघालय का स्थान आता है। गोवा निम्नतम जन्म दर 14.2 शिशु प्रति हजार वाला राज्य है, जिसके बाद क्रमशः केरल और त्रिपुरा आते हैं। जन्म दरों में असमानता के आधार पर भारत के समस्त राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों को 3 वृहत वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, उच्च जन्म दर वाले प्रदेश। दूसरा, मध्यम जन्म दर वाले प्रदेश। तीसरा, निम्न जन्म दर वाले प्रदेश। पहला, उच्च जन्म दर वाले प्रदेश 30 शिशु प्रति हजार या उससे अधिक। इस श्रेणी के अंतर्गत उत्तरी भारत के उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मेघालय और मध्य प्रदेश सम्मिलित हैं। इन राज्यों में अशोधित जन्म दर 30 प्रति हजार से अधिक पाई गई है। देश की सर्वोच्च जन्म दर उत्तर प्रदेश में अंकित की गई है, जिसके पश्चात क्रमशः मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मेघालय का स्थान है। ये राज्य देश के सर्वाधिक निर्धन और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े राज्य माने जाते हैं। देश के सबसे पिछड़े माने जाने वाले बीमारू नाम से पुकारे जाने वाले राज्य बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश उच्च जन्म दर और तीव्र जनसंख्या वृद्धि से ग्रसित हैं। इन राज्यों में ग्रामीण परिवेश की प्रधानता, शिक्षा की कमी, परिवार नियोजन की प्रति उदासीनता, बृहत परिवार की धारणा, सामाजिक मान्यताओं के आदि के कारणों से संतति निग्रह के उपायों को यथोचित ढंग से नहीं अपनाया जाता। इन राज्यों में व्यापक ग्रामीण निर्धनता भी उच्च जन्मदर के लिए उत्तरदायी है। निर्धन परिवारों में अल्पायु से ही बच्चे उत्पादक कार्यों में लग जाते हैं और परिवार की आय बढ़ाने में सहायक होते हैं। विद्यालय न जाने के कारण इनकी शिक्षा पर कोई खर्च नहीं पड़ता है। इससे निर्धन परिवार में परिवार को पूंजी माना जाता है, जिससे बड़े परिवार को प्रोत्साहन मिलता है। दूसरा, मध्यम जन्मदर वाले प्रदेश 20 से 30 प्रति हजार। इसके अंतर्गत देश के लगभग आधे राज्य सम्मिलित हैं, जहां जन्मदर 20 से लेकर 30 प्रति हजार तक पाई जाती है। इनमें हरियाणा सर्वोच्च स्थान पर है, जहां जन्मदर 28.3 अंकित की गई है। इसके पश्चात दादर एवं नगर हवेली 28.2, असम 28.2, उड़ीसा 26.5, गुजरात 26.6, दादर एवं दीव, दमन एवं दीव 24.9 आदि राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्र आते हैं। जन्म दर के अनुसार अवरोही क्रम में इस श्रेणी के अन्य राज्य हैं पंजाब, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और दिल्ली। इन राज्यों का शैक्षिक स्तर तथा नगरीकरण का स्तर सामान्यतः राष्ट्रीय औसत के समकक्ष है। नियोजन काल में इन राज्यों में औद्योगिकरण, नगरीकरण और शैक्षिक स्तर में तीव्र वृद्धि हुई है। पिछले 3 दशकों में परिवार नियोजन में लोगों की रुचि बढ़ी है, जिसके फलस्वरूप जन्म दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। तीसरा, निम्न जन्म दर वाले प्रदेश 20 प्रति हजार से कम। इस श्रेणी के अंतर्गत देश के कुल 9 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र सम्मिलित हैं। भारत की निम्नतम जन्म दर 14.2 पश्चिमी तट पर स्थित लघु राज्य गोवा में पाई जाती है। यह ईसाई बहुल तथा उच्च साक्षरता वाला राज्य है, जो पाश्चात्य सभ्यता से अधिक प्रभावित है। गोवा के पश्चात केरल 17.9 का स्थान है, जो देश का सर्वोच्च साक्षर प्रदेश है। वहां परिवार नियोजन के प्रति व्यापक जनजागरण और सामाजिक चेतना पाई जाती है। आरोही क्रम में निम्न जन्म दर वाले अन्य प्रदेश हैं त्रिपुरा 18.3, पांडिचेरी 18.4, अंडमान एवं निकोबार 18.6, चंडीगढ़ 18.8, तमिलनाडु 19.0, मणिपुर 19.7 और सिक्किम 19.8। निम्न जन्म दर वाले प्रदेश एक दूसरे से पृथक पृथक और काफी दूर दूर के दूर दूर देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं। केरल और तमिलनाडु को छोड़कर इस वर्ग के अन्य राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्र लघु आकार वाले हैं। भारत में प्रजननता को प्रभावित करने वाले कारक। भारत में प्रजननता की क्षेत्रीय विभिन्नता के लिए अनेक सामाजिक, आर्थिक तथा व्यक्तिक कारक उत्तरदायी हैं, जो प्रजननता को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। प्रजननता या जन्मदर को प्रभावित करने वाले कारकों की संख्या इतनी अधिक हो सकती है कि सूक्ष्म स्तर पर उनकी सूची तैयार करना सुगम नहीं है। अतः उनमें से केवल प्रमुख कारकों की चर्चा की जा सकती है, जो प्रजननता को बृहद स्तर पर प्रभावित करते हैं। पहला, विवाह की व्यापकता। भारत की 3/4 से अधिक जनसंख्या हिंदू है और हिंदू धर्म में विवाह एक अनिवार्य संस्कार माना जाता है, जो उच्च प्रजननता का मौलिक आधार है। दूसरा बड़ा समूह मुसलमानों का है, जिनमें पुनर्विवाह और बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है। यही कारण है कि भारत में जन्म दर उच्च है। भारत में विवाह को एक स्वाभाविक क्रिया माना जाता है, जिससे के कारण यह सर्वव्यापक है। विवाह की आयु। भारत में बाल विवाह या अल्पायु विवाह की प्रथा प्रचलित है। उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण यहाँ स्त्रियां और पुरुषों में प्रजनन क्षमता अपेक्षाकृत पहले प्राप्त हो जाती है। इससे स्त्रियों की प्रजनन आयु लंबी होती है, जो जन्म दर को उच्च करने में सहायक है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कन्या का विवाह संस्कार उसके रजस्वला होने से पूर्व हो जाना चाहिए, अन्यथा उसके माता-पिता को नरक प्राप्त होता है। बाल विवाह का प्रचलन इसी दृष्टिकोण का परिणाम है। भारत में बाल विवाह को समाप्त करने के उद्देश्य से ही भारत सरकार द्वारा बालिकाओं और बालकों की विवाह की आयु जो स्वतंत्रता के पश्चात 15 से 18 वर्ष रखी गई थी, अब वह 18 और 21 वर्ष कर दी गई है। इस विधेयक का पालन अभी भी भली प्रकार से नहीं हो पा रहा है और आज भी अल्पायु में विवाह का प्रचलन संपूर्ण देश में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। तीसरा, पुनर्विवाह और विधवा विवाह। भारत में पुरुषों के पुनर्विवाह की प्रथा तो सामान्यतः सभी समाजों में पाई जाती है, किंतु विधवा विवाह की आवृत्ति कुछ हिंदू जातियों, विशेषतः ब्राह्मणों में बहुत कम है। जिन सामाजिक वर्गों एवं जातियों में पुनर्विवाह तथा विधवा विवाह प्रचलित हैं, उनमें जन्म दर ऊंची होने की संभावना बढ़ जाती है। अनुसूचित जनजातियों में जन्म दर ऊंची होने के पीछे यह भी एक कारण है। आर्थिक क्रियाओं में स्त्रियों की संलग्नता। जिन स्त्रियों को काम करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है अथवा विभिन्न कार्यों में व्यस्तता अधिक रहती है, उन्हें बच्चों की देखरेख तथा लालन पालन के लिए बहुत कम समय मिल पाता है। अतः वे परिवार नियोजन को अपनाना चाहती हैं और संतति निग्रह के उपायों को अपनाती हैं जो जन्म दर में कमी लाने में सहायक हुए। परिवार की आर्थिक स्थिति। भारत के ग्रामीण और नगरी दोनों क्षेत्रों में निर्धन परिवारों की बहुलता है। इनमें परिवार को पूंजी माना जाता है और इस कारण से लोग अधिक संतान उत्पत्ति करते हैं। भारत में निर्धनता उच्च जन्मदर का एक प्रमुख कारण भी है और इससे उत्पन्न अति जनसंख्या का परिणाम भी। उच्च आय वर्गीय दंपति अपने व्यवसाय में अधिक रुचि लेते हैं और जीवन स्तर को उच्च बनाए रखने के लिए तत्पर रहते हैं। वे प्रायः परिवार नियोजन के पक्षधर होते हैं। मध्यम वर्गीय लोग बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर पड़ने वाले भारी खर्चों के कारण सामान्यतया परिवार नियोजन चाहते हैं। छठा, शैक्षिक स्तर। शिक्षा और प्रजननता में विरोधी संबंध है। शिक्षित स्त्री पुरुष लघु परिवार के महत्व को और अति जनसंख्या के दुष्प्रभावों को समझते हैं तथा अधिक संतान नहीं चाहते हैं। अशिक्षा या शिक्षा के निम्न स्तर से प्रजननता को बढ़ावा मिलता है। भारत की लगभग आधी जनसंख्या अनपढ़ तथा अशिक्षित होने के कारण अधिक संतान उत्पत्ति के आर्थिक तथा सामाजिक दुष्परिणामों को नहीं समझ पाती है। इसलिए अशिक्षित स्त्री पुरुष कम संतान उत्पत्ति के लिए न तो आत्मसंयम करते हैं, न ही कोई कारगर उपाय ही अपनाते हैं। धार्मिक एवं जाति संरचना। भारत में जन्मदर को धर्म और जाति भारत में जन्म दर को धर्म और जाति दोनों ही उल्लेखनीय रूपों से प्रभावित करते हैं। इस्लाम धर्म परिवार नियोजन के ऐच्छिक उपायों का विरोधी है। इस कारण से मुसलमानों में प्रजनन दर हिंदुओं की तुलना में अधिक है। इस प्रकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में भी जन्म दर अन्य सामाजिक वर्गों की तुलना में उच्च है। आठवां, समाज में स्त्रियों की दशा। जिस समाज में स्त्रियों की दशा निम्न तथा गिरी हुई होती है, वहां पारिवारिक तथा सामाजिक निर्णयों में उनके भागीदारी प्रायः नहीं होती है। संतान उत्पत्ति के निर्णय में भी पति का निर्णय ही सर्वोपरि होता है। जिस समाज में स्त्रियां अधिक स्वच्छंद तथा स्वतंत्र हैं, वहां जन्म दर कम पाई जाती है। कई समाजों में उच्च जन्म दर के पीछे स्त्रियों की निम्न सामाजिक स्तर का भी प्रमुख हाथ है। पुत्र जन्म की प्राथमिकता। भारत के पुरुष प्रधान समाज में पुत्र प्राप्ति के लिए लोगों में अधिक लालसा पाई जाती है, जिसके कारण पुत्र जन्म को प्राथमिकता दी जाती है। हिंदुओं में ऐसी धारणा व्याप्त है कि वंश परंपरा पुत्रों से ही चलती है और माता पिता के अंतिम संस्कार करने का भी वही अधिकारी होता है। विवाह के पश्चात पुत्रियां अपने पति के घर चली जाती हैं और वृद्धावस्था में माता पिता अपने पुत्र पर ही आश्रित होते हैं। इसी कारण से अनेक दंपत्ति कई पुत्रियों के जन्म के पश्चात भी पुत्र प्राप्ति की कामना से संतानोत्पत्ति में तत्पर रहते हैं। इससे प्रजनन दर में वृद्धि होती है। 10. परिवार नियोजन के साधनों का प्रयोग। पश्चिमी देशों में जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए संतति निग्रह बर्थ कंट्रोल के विविध आधुनिक साधनों का प्रयोग किया जाता है, किंतु भारत में व्यापक निर्धनता, अशिक्षा, अंधविश्वास, धार्मिक रूढ़िवादिता आदि के कारण इन नियंत्रक उपायों को बहुत कम लोग ही अपनाते हैं। संतति निग्रह के विभिन्न साधन पर्याप्त मात्रा में सर्वत्र विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं होते हैं। इस प्रकार जनसंख्या का एक बड़ा भाग संतति निग्रह के साधनों से अपरिचित होने अथवा उनके उपलब्ध न होने के कारण परिवार नियोजन के प्रति उदासीन है। 11. सरकारी नीति। किसी भी देश की जनसंख्या नीति उसकी प्रजनन दर और जनसंख्या वृद्धि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। ब्रिटिश काल में जनसंख्या नियंत्रण के लिए भारत में कोई स्पष्ट जनसंख्या नीति नहीं थी, जिसके कारण जनसंख्या स्वतंत्र रूप से बढ़ती गई और जन्म दर निरंतर उच्च बनी रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत परिवार नियोजन के लिए नीतियां तैयार की गईं और संतति निग्रह के लिए भी विभिन्न उपायों के अपनाने पर जोर दिया गया। परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विविध कार्यक्रम लागू किए गए और संतति निग्रह के विभिन्न साधनों को उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब ऐच्छिक गर्भपात को भी वैधता प्राप्त हो गई है। इन प्रयासों से सन 1980 वे दशक से भारत में प्रजनन दर स्थिर हो गई है और 1990 दशक से ह्रासोन्मुख है। संक्षेप में भारत में उच्च जन्म दर पाई जाती है। इसके लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण है, पहला विवाह का आवश्यक होना, दूसरा बाल विवाह या अल्पायु में विवाह की प्रथा, तीसरा पुनर्विवाह और विधवा विवाह का प्रचलन, चौथा स्त्रियों का निरक्षर तथा अशिक्षित होना, पांचवा स्त्रियों का समाज में निम्नतर स्तर, छठा स्त्रियों का आर्थिक क्रियाओं में अल्प भागीदारी, सातवां व्यापक निर्धनता, आठवां अंधविश्वास तथा धार्मिक कट्टरता का प्रभुत्व, नौवां पुत्र जन्म को प्राथमिकता, दसवां संतति निग्रह के साधनों की अनुपलब्धता तथा उनके प्रयोग विधि से अनभिज्ञ होना, 11. परिवार नियोजन कार्यक्रमों को लागू करने में सरकारी एवं प्रशासनिक शिथिलता आदि।